शक्तियों का अधिकार आदि दूसरे से परिणमी परिणामक शक्ति पर मर्म भरा व्याख्यान सुना। शक्तियों की व्याख्यान में पूज्य गुरुदेव ने जो खुलासा किया बहुत ही जिसके शब्द नहीं मर का इतना मर्म भरा है और वो मर्म उनके भीतर से निकला है। कोई टीका नहीं, कोई श्लोक नहीं, कोई अन्य ग्रंथों में इस तरह का नहीं है। अभी हमने परिणाम में परिणामक शक्ति पर पूज्य गुरुदेव से सुना, उसका भी विचार करेंगे। और आज का जो दिन है और भी शक्तियों पर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। अभी अंत में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शक्तियों में जो मर्म है वो जो अंतरंग में भागता है वो शब्दों में नहीं आ पाता। जो अंतरंग में ज्ञानियों के ज्ञान में उनके ज्ञान में जो भाषित हो रहा था होता है वो शब्दों में नहीं आ पाता है। आज सुबह धर्म की परिभाषा पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान में आई थी कि भगवान आत्मा के आनंद का अनुभव करना ही धर्म है। भगवान आत्मा के आनंद का अनुभव करना ही धर्म है। सद आवश्यक जैनों का धर्म कहते हैं 28 मूल गुण मूल्यों का धर्म कहते हैं। ये तो शरीर की क्रियाएं, असल में चैतन्य जाए भगवान आत्मा के आनंद का भोग करना, वेदन करना, ये धर्म है। पूजन हुई कितना धर्म हुआ, उपवास किया कितना धर्म हुआ, शास्त्र का अध्ययन किया कितना धर्म हुआ, चैतन्य जाए भगवान आत्मा का अनुभव करना, उसके आनंद का स्वाद लेना, ये धर्म है। और पूजन में स्वाध्याय में यदि ये आनंद आता है तो धर्म हुआ है, और ये आनंद नहीं आता है तो जैसे रत्न पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ में बताया कि 5 व्रत नहीं होते, उदाहरण नहीं है उदाहरण कि व्रत तो एक ही होता है,
और वो है अहिंसा व्रत। कौन सा व्रत? अहिंसा। सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य ये तो उसके बाल की तरह है। नहीं आया तो नहीं। उदाहरण दिया, खेत में फसल होती है, खेत में फसल होती है, उस फसल की रक्षा के लिए चारों तरफ से बाढ़ का आयोजन करते हैं। किस लिए? किस लिए करते? रक्षा के लिए करते। किसकी? की फसल की। ये उदाहरण है कि जैसे फसल की रक्षा के लिए बाढ़ लगाते हैं, वैसे अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की वो बाढ़ लगाते हैं। मतलब फसल क्या है? अहिंसा। ऐसे ही ये भी उदाहरण है, ऐसे ही वीतराग का या ध्रुव चैतन्य जायक भगवान आत्मा वो ज्ञानियों की फसल होती है। बराबर। ये ध्रुव भगवान आत्मा ये ज्ञानियों की फसल है और उसको पाने के लिए जो बाहर के आयोजन है वो किसके लिए? क्योंकि धर्म उसे कहते हैं जहाँ परिणामों में पूर्ण संतुष्टि हो जाए, जिसके बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा न रहे। जिससे प्राप्त करने के बाद किसी अन्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। चैतन्य जायक भगवान आत्मा के रसास्वादन के बाद चैतन्य जायक भगवान आत्मा के स्वाद के बाद ज्ञानियों को अन्य पर की इच्छा नहीं होती। बात समझ में आ गई? मेरी बात सुन। जायक भगवान आत्मा के अनुभव के बाद कोई इच्छा शेष नहीं रहती, पूर्ण संतुष्टि होती है। इसलिए ज्ञानी परिग्रहों का त्याग भी करते हैं, क्योंकि ये बाधक है। इनका जो राग है वो बाधक है और सड़े हुए तिनके के समान छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं ये लास्टी वाली बात है कि अंतरंग में चैतन्य जायक भगवान आत्मा के स्वाद के आनंद के अनुभव के शांति के कारण से बाहर के पदार्थों की इच्छा भी नहीं होती। वो पदार्थ अपने आप छूट जाते हैं, छूट जाते हैं, इसको त्याग कहने में आता है। कि अंतरंग के अनुभव में वेदन में जैसे अज्ञानियों को आँखों से रूप आदि पदार्थ दिखते हैं, वैसे ज्ञानियों को अतीन्द्रिय ज्ञान से चैतन्य जायक भगवान आत्मा प्रत्यक्ष दिखता है। अज्ञानी को शरीर दिखता है और ज्ञानियों को किशोर भाई शरीर से भिन्न अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो तो शरीर से भिन्न चैतन्य जायक भगवान आत्मा ही दिखता है। प्रारंभिक काल में अभ्यास नहीं होता है तब आँख बंद करके, और अभ्यास इतना सज जाए आँख खुली रह जाए तो भी चैतन्य जायक भगवान आत्मा ही दिखता है। जैसे इंद्रिय ज्ञान से बाहर के पदार्थ दिखते हैं, ऐसे ही ठीक ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञानियों को चैतन्य जायक भगवान आत्मा ही दिखता है। अर्थात चैतन्य जायक भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा दिखता है। वास्तव में चैतन्य जायक भगवान आत्मा अकेला दिखता नहीं है। स्वामी जी के प्रवचनों में शक्तियों के संबंध में बताया कि ये शक्तियाँ क्या है, कि भगवान आत्मा का अविनाशी अविभाज्य कुटुंब है। कैसा कुटुंब बताया किरण भाई? ये अनंत शक्तियां भगवान आत्मा का अविनाशी अविभाज्य कुटुंब है। समझ गए ना? कुटुंब परिवार है, कभी नष्ट न होने वाला और कभी बंटवारा न होने वाला, विभाजित नहीं होने वाला। यहाँ तो लोक में तो कषाय के कारण से बंटवारा हो जाए, तीव्र कषाय के कारण। कषाय में नींद तो नहीं आ रही भाई, ये समागम बार बार नहीं मिलेंगे, ये निश्चित मानो। क्योंकि हर बार ऐसा पुण्य नहीं होता है। स्वामी जी के प्रवचन में ऐसी एक बात है, शाम का प्रवचन था रमेश भाई, स्वामी जी कहते आज दोपहर में ऐसा विचार आया। क्या विचार आया? विचार ये आया, मुनिराज को जब ये पता चलता हो कि मेरी आयु समाप्त तो होने वाली है। क्या विचार है स्वामी? कि मुनिराज को ये पता चले कि मेरी आयु समाप्त होने वाली है, तो क्या करते हैं? ये विकल्प स्वामी जी की इसमें तो ये कहते हैं, वहां पर स्वामी जी ने उदाहरण श्लोक बताया कि चलो सखी वहां जाइए। क्या? चलो सखी वहां जाइए, जान अपना कोई है? कि मुनिराज की परिणति मुनिराज से कैसी, समझ में अर्थ निकल। क्या? कि मुनिराज की परिणति मुनिराज से कैसी है? कि चलो सखी वहां जाइए, जहान अपना को है? जहां कोई अपना नहीं है, इसका अर्थ भी स्वामी जी ने थोड़ा सा विस्तार करके कहा है। कलेवर जनावरा भाषे, कलेवर जनावरा भाषे और मुएन रोये को। बात समझ में कि परिणति मुनिराज से कहती है कि हे सखी वहां चलो। व्यवहार से तो गुफा का वर्णन है, निश्चय से चैतन्य गुफा का वर्णन है। कि जहान अपना कोई, इसका अर्थ स्वामी जी ने ये कहा कि कोई मुझे पहचाने कोई जाने, इसमें कोई बल नहीं है। कोई दो चार दस बीस आदमी जाने, कालांतर में तो वो भी भूल जाएंगे। मान कषाय के लिए कोई कार्य करते हो, ये भी निंदा की बात है, अपने लिए अपना नुकसान है। चलो सखी वहां जाइए, हे सखी वहां चलो, जहां तक अनादिकाल से जा नहीं पाए ऐसी जगह चलो। कहां नहीं गए? तीर्थ यात्राएं खूब थी, अष्टानिका पर्व में शिखर जी गयी, परिसन पर्व में वहां गए, यात्राएं खूब थी बाहर की, बहु गई अंत यात्रा नहीं हुई। चलो सखी वहां जाइए, कहां चले? कि जहां अनादिकाल से आज तक नहीं जा पाए, जहां जाने पर मात्र यात्रा ही नहीं होती है, चैतन्य लायक भगवान आत्मा को देखने के बाद, उसकी श्रद्धा करने के बाद, अनुभूति करने के बाद सिर्फ ज्ञान ही प्रकट नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के साथ अंतःपातिनी, कौन सा शब्द आया? अंतःपातिनी। ज्ञान के साथ उछलने वाली अनंतानंद शक्तियाँ ज्ञान में प्रकट होती है। क्यों? कि वो शक्तियाँ ज्ञान के साथ अंतःपातिनी है, नियम से ज्ञान के साथ प्रकट होती है। क्या मतलब? कि चैतन्य जायक भगवान आत्मा का अनुभव होता है तो कोड़ा अनुभव नहीं होता, अनुभव के साथ अनंत गुणों का वैभव पर्यायों में प्रकट होता है। समझ में आ गई है कि केवल श्रद्धा या ज्ञान ही नहीं होता है, बल्कि चैतन्य जायक भगवान आत्मा की अनुभूति के साथ अतिंद्रिय आनंद, अतिंद्रिय सुख, अतिंद्रिय शांति प्रकट होगी। केवल श्रद्धा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ अनुभूति और उसके साथ अनंतानंत गुणों का परिणमन, निर्मल परिणमन ज्ञान में प्रकट होता है। देखो, लोगों को लगता है कि सोनगढ़ वालों की चर्चा निश्चय की चर्चा, क्यों पंडित साहब यही कहते हैं। देखो, दो बात है। एक बात तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि क्रिया से धर्म नहीं मानना और क्रिया में प्रमाद ही नहीं करना। क्रिया में धर्म नहीं मानना और क्रिया में प्रमाद भी नहीं करना, क्योंकि ये प्रमाद कषाय को उत्पन्न करता है और कषाय आत्मा को आत्मा से दूर रखती है। बात समझ में आई? कीजे शक्ति प्रमाण, लेकिन शक्ति जो क्रिया है उस क्रिया से धर्म भी नहीं है, ये ज्ञान भी है। क्रिया से अभिप्राय शरीर की, राग आदि की जो क्रिया है, दोनों क्रियाएं यहाँ लेने। ये स्वामी जी से कल रात में स्वाध्याय कर रहा था, उसमें भी प्रश्न किया किसी शक्ति के वर्णन में, किसी शक्ति के वर्णन में क्रिया मतलब क्या, और शक्तियों के ज्ञान में शक्ति क्रिया और सच्चा ज्ञान प्रकट होता है, वहाँ क्रिया शब्द का स्वामी जी का अर्थ है। यहाँ अभिप्राय ये है कि जिससे प्रमाद का पोषण न होता हो, ऐसी ज्ञान क्रिया और उसके निमित्त से होने वाली शरीर की क्रिया बराबर, और ये दोनों क्रियाएं होते हुए उसमें न तो प्रमाद करना, न इस प्रकार के बहिर्मुखी क्रिया और ज्ञान से धर्म मानना। क्रिया से ज्ञान धर्म भी नहीं और क्रिया नहीं करने से भी धर्म नहीं, क्रिया के द्वारा धर्म होता है ऐसा भी नहीं और क्रिया में प्रमाद भी नहीं। एक बात तो ये, क्रिया को धर्म नहीं मानना और क्रिया में प्रमाद भी नहीं रखना, ये दोनों ही है। क्योंकि मोक्ष ये जो सोनगढ़ी या समझ लीजिए स्वामी जी के भक्तों के बारे में कहा जाता है, या अक्सर ये देखने में भी आता है, निश्चय से कोरे ज्ञान से स्वच्छंदता पनपती, निश्चय के कोरे ज्ञान से स्वच्छंदता पनपती है, उसी निश्चय के अनुभव से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। बात समझ में आ गई? जिस निश्चय के कोरे ज्ञान से स्वच्छंदता प्रकट होती है या पसरती है, उसी निश्चय के ज्ञान से, क्योंकि व्यवहार करते करते आज तक कभी सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, राग करते करते भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। अभी तो अकार्य कारण शक्ति चली थी, अभी स्वामी जी के प्रवचन में प्रारंभ में अकार्य कारण शक्ति में क्या समझ में आना चाहिए कि मेरे राग के कारण से ये कार्य हुआ, ये बात यदि है तो अभी अकार्य कारण शक्ति समझ में नहीं आई। मैंने कहा इसलिए ऐसा हुआ, सही बताओ, मैंने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा है क्या है? कि मैंने जाना, स्वामी जी के प्रवचन में तो ये बात आई कि राग के कारण से ज्ञान नहीं, राग के कारण से धर्म नहीं, ये बात तो है ही, लेकिन राग के कारण से मुझे ज्ञान हुआ ये बात भी नहीं है। अकार्य कारण शक्ति ये बताती है कि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय ये अपने से होती है, अन्य के कारण से नहीं। इतना स्वतंत्रपना समझ में आना चाहिए। तब तो क्या होगा कि मेरे कारण से हुई ये माने तो क्या होगा, राग होता है, अभिमान होता है, और अन्य के कारण से हुआ ऐसा माने, यदि अपनी पर्याय किसी अन्य के कारण से हो, यदि वो विकारी है, क्रोधादिक वाली है, तो दूसरे पर द्वेष का आरोपण हो गया, मतलब दूसरे से द्वेष हो गया। प्रत्येक पर्याय प्रति समय अपने से होती है। स्वामी जी ने ये कहा था कि राग के कारण से ज्ञान नहीं, सुना था प्रारंभ वाली की बात, कि राग में अकार्य कारणत्व है, राग किसी का कारण नहीं और राग किसी का कार्य भी नहीं, ऐसे ही ज्ञान भी राग के कारण से नहीं हुआ। समझ में आती है बातें, दुनिया की बातें समझ में आती होगी, रस भी वहाँ बनता है। देखो कितनी मोटी बात है। आज नाश्ते में यदि आपके मन पसंद का कोई पकवान मिल गया तो कैसा लगता है, अंदर ही अंदर होता है, भोजन में कोई ऐसा सब्जी आपके मन पसंद की हो और अच्छी बनी हो, यहाँ अनंत गुणों के पिंड चैतन्य जाए भगवान आत्मा की चर्चा चले, अनादि का संसार का अभाव जिसमें हो वहाँ रस नहीं बने तो अनुभव कहाँ से, समस्या तो ये है, रस ही नहीं बने प्रभु तो आनंद कहाँ से आए, अनुभूति कहाँ से हो, और अनुभूति के बिना शरीर छूट गया तो गया काम। स्वामी जी ने जब कुमार मुनि का उदाहरण दिया, ब्रह्मचारी रायमंड जी ने नगाड़े की बात कही कि जब जीव को चैतन्य जाए भगवान आत्मा की लीनता होती है तो सिर पर सिगड़ी जल रही है, ये चित्र है वहाँ भी स्वामी जी ने भी याद किया था। चैतन्य जाए भगवान आत्मा में लीनता होने के बाद कितने ही नगाड़े बाहर में बजते हो लेकिन वो ज्ञान को सुनाई नहीं देते, कितनी एकाग्रता। स्वामी जी बार बार कहते कि बात सूक्ष्म है, और जगह तो सुनने को ही नहीं मिलती, और जगह तो लोक व्यवहार में मोटी मोटी बातें और लोगों के संस्कार भी ऐसे ही था, जगत तो भूला है। टोडर मुंडे ने कई जगह जगत कैसा है भूला है, जैसा पिला दो ऐसा चीज है, उपदेश जैसा उनको बता दो है? लेकिन वास्तव में उपदेश क्या, भगवान की वाणी क्या है कि तू पर घर में फिर रहा है अनादि काल से, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, अरे प्रभु अंदर से विचार तो कर अपने लिए भजन पर, कि पर घर में घूमते घूमते अनादि काल बीत गया और आज तक मैं अपने घर में नहीं आया, बहुत दिन बीते, बहुत दिन मतलब अनादि काल से मैं बीत गया। ऐसा नहीं, यदि तैयारी करे तो अभी इस समय बैठ सकता है, कोई और नहीं है, अभी बैठ सकता है, इसी समय बैठ सकता है, यदि अंदर से तैयारी हो। स्वामी जी कहते गुरु मिला, कौन मिला, गुरु मिला, तो कहते श्रीमद रायचंद जी का हवाला देकर के कहते हैं गुरु मिला। गुरु मिला मतलब कब समझे गुरु मिला, कि जब चैतन्य जाए भगवान आत्मा के दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि हमें गुरु मिला, और चैतन्य जाए भगवान आत्मा के दर्शन न हो तो है सही निश्चय से मानने में नहीं आएगा कि हमको गुरु मिला है। प्रकाश शक्ति देखो, और एक अभी स्वामी जी ने जो जिस पर चर्चा की उसका सामान्य भाव बता करके प्रकाश शक्ति सक्षत्व शक्ति पर विचार करते हैं। स्वामी जी ने बहुत खुलासा किया, फिर भी थोड़ा सा सारांश अपन पढ़ते हैं। देखना शक्ति निकालना 15 पर आत्म निमित्त पंडित साहब है ना उसमें, मुझे ये बताना है पंडित साहब से कि संस्कृत में पर आत्म निमित्त कह शब्द है और हिंदी में जो अनुवाद किया पर और आत्म किया, जो संस्कृत में भाव खुल जाता है वो अनुवाद में उतना नहीं आ पाता ऐसा मुझे लगता है। मानिक भाई पर आत्म निमित्त ज्ञेय ज्ञान आकार ग्रहण ग्राहण, देखो जोड़े हैं वहाँ पर आत्म ज्ञेय ज्ञान ग्रहण और ग्राहण रजनी छह शब्द हो गए ना, पर आत्म ज्ञेय ज्ञान ग्रहण और ग्राहण, पर दूसरे जोड़े में से ये शब्द लेना और तीसरे जोड़े में से ग्रहण लेना बराबर। पहले तो छह जोड़े बना लो अपने है ना, पर आत्म एक जोड़ा बन गया, मतलब जोड़ा दो शब्द हो गए ना ये पर और आत्म, दूसरा ये ज्ञान और तीसरा ग्रहण और ग्राहण, तो एक एक शब्द ले लो क्या कि पर साथ में ये फिर ग्रहण, दूसरा जोड़ा ले लो आत्म ज्ञान और ग्रहण बराबर, तीन ये जोड़ा बन जाएगा, एक इधर का एक इधर का दो पार्टियां बन जाएगी है ना, कि पर ये है ना, पर दूसरे पदार्थों को ये मतलब जानना, पर पदार्थों को जानना ये क्या हो गया ज्ञान हो गया, पदार्थों को जानना क्या हो गया ज्ञान हो गया, पर पदार्थों को जानना ये ज्ञान है और ये जानने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है, कौन सा ज्ञान ये कौन ये श्रुत ज्ञान है और ये श्रुत ज्ञान प्रमाण है, कौन सा है प्रमाण, वो स्वामी जी के उससे खुला था सर, वो तो हो गया प्रमाण, समझ में आ गई बात है, तो पर ज्ञेयों को जानना ये प्रमाण नाम की शक्ति क्या है, पर ज्ञेयों को जानना ये क्या है प्रमाण नाम की शक्ति है, इसमें से स्वामी जी ने क्या अर्थ निकाले, आशय क्या निकाला कि पर ज्ञेयों को जानना इतना ही तेरा धर्म है, पर ज्ञेयों को करना ये तेरा धर्म नहीं, बात समझ में आ गई, बस 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 जानना जानना जी बराबर, ग्रहण का अर्थ जानना बराबर सही पकड़ा है, पर ये और ग्रहण, ग्रहण का अर्थ जानना और ग्रहण का अर्थ जनावना उसके बाद में कर सकते बराबर, पर ये है थोड़े से ऐसी भी रुचि रखना, देखो दुनिया भर की रुचि रखते हैं खाने में पीने में कपड़े लत्ते में घूमने घामने में, इससे संसार ही बढ़ता है, एक साड़ी एक कपड़ा खरीदने जाते हैं बाजार में तो कितना टाइम निकल जाता है, कितने घंटे निकल जाते हैं, और उससे संसार ही बढ़ता है, द्रव्य का भी खर्चा हो जाता है जिसके प्रति राग है समझ लिए संसारियों को है? और ये ऐसी बात है स्वामी जी को कठिन लगे थोड़ी सी, भैया कठिन ही लगे नीम भले ही कड़वा है लेकिन अनेक गुणकारी है, ऐसे ही ये उपदेश भी जिनवन का मार्ग भी धर्म का मार्ग भी सारी संसार की रुचि पड़ी है, ऐसा ही होता है भाई लोक व्यवहार में नवीन भाई, ऐसा ही होता है लोक में, कोई श्रावक सृष्टि कह दे तो इतना फूल के कुप्पा हो जाए और उसको ज्ञानी कहे तो लगता ही नहीं कि मुझे कुछ था, है ये संसार की दशा है, भगवान स्वामी जी के यहाँ तो अभी एक अर्थ ये भी निकाला स्वामी, पहला अर्थ तो ये निकाला कौन सा कि सभी ज्ञेय है, सभी ज्ञान के ज्ञेय है तो उनका कर्ता नहीं, एक अर्थ निकाला, दूसरा कि कोई हमारा शत्रु नहीं निकाला था यार, मन भी थोड़ा आवाज बढ़ा दो, कि कोई हमारा देह नहीं और हम किसी से शत्रु नहीं, मित्र और शत्रुता का अर्थ निकला कि सभी देह है, कोई हमारा मित्र नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं, सभी ज्ञान के क्या है, देह है। अब ये शत्रु और मित्र क्यों लिखते हैं? ये गलती से लिखते हैं, ज्ञान से नहीं लिखते। बात समझ में आ गई? कोई शत्रु दिखता है या कोई मित्र दिखता है, ये गलती से दिखता है, ज्ञान से नहीं। और पंडित साहब ने भी याद किया था कि सम्यक दृष्टि की दो शक्तियाँ होती है, एक ज्ञान शक्ति और दूसरी वैराग्य शक्ति। किसी को जानना ये तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उसमें शत्रु और मित्रता की स्थापना करना ये असंयम है, अपराध है, अज्ञान है, तत्व ज्ञान का अभाव है। खरे खरे संसार की कोई भी वस्तु न शत्रु है, न मित्र है, न इष्ट है, न अनिष्ट है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल नहीं। युगल जी ने, आसानी जी ने युगल जी को भी याद किया था, कहा था बहुत सरस पढ़ते हैं, कि अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। कि ये नवीन भाई अनुकूल है और दूसरे भाई प्रतिकूल है, ये क्या है? ज्ञान नहीं, ये झूठा है, है कि कोई अनुकूल नहीं होता और कोई प्रतिकूल नहीं होता। जिनागम में बहुत सारी व्याख्याएं ऐसी की है कि जैसे ये बताया कि यदि किसी का इस जीवन में पाप का उदय चल रहा है, पाप प्रकृतियों का उदय चल रहा हो, तो पूर्व जन्म में जो शत्रु थे वो परिवार में आकर के मिलते हैं। बरोबर नहीं है अभी? और वर्तमान में पुण्य प्रकृतियों का उदय चल रहा हो तो पूर्व में जो मित्र थे वो यहाँ आकर जन्म लेते हैं। ये भी बराबर है। ये तो ऐसा व्यवहार से कहा जाता है कि पूर्व में शत्रु था, पूर्व में मित्र था, ये भी अज्ञानी कह रहा। पूर्व में भी मेरा कोई शत्रु नहीं था, वर्तमान में भी मेरा कोई शत्रु नहीं है। तत्व ज्ञान तो ये है, किसी को शत्रु देखना, किसी को मित्र देखना, ये अवैराग्य है, राग भरा कार्य है। मैं तो चैतन्य जाए भगवान आत्मा हूँ और जो दिखाई दे रहे हैं ये सब ज्ञान के देह है। बराबर, ये सब देह है। पर देह ग्रहण, कितने शब्द निकालने हैं? पर देह ग्रहण। और ये तो अपनी इस शक्ति की चर्चा कर ली ना, ये ग्रहण शब्द भी उपचार से समझ के प्रवचन करो। क्या लिखा है कि पर देह ग्रहण ये भी उपचार है, क्योंकि मुझ में स्वच्छत्व शक्ति है, मुझ में स्वच्छत्व शक्ति है, मुझे ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। एक बात और पंडित साहब आपकी दृष्टि से कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने छठे गुणस्थान में बुद्धि और अबुद्धि पूर्वक दोनों राज, कोई भाई उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि छठे गुणस्थान में तो बुद्धि पूर्वक राग होता है और सातवें गुणस्थान में अबुद्धि पूर्वक एवं नहीं। व्यक्त अव्यक्त के गोमत्सार कर्मकांड के आधार से स्वामी जी ने बताया कि छठे गुणस्थान में भी बुद्धि और अबुद्धि पूर्वक दोनों प्रकार का राग होता है। सरल सा तर्क ये है कि जितना जानने में आया वो बुद्धि पूर्वक रहा छठे गुणस्थान में, और जितना नहीं जानने में आया अबुद्धि पूर्वक। और ये सभी जगह लागू होता है, पहले गुणस्थान में भी जितना जानने में आ रहा है वो तो बुद्धि पूर्वक। कैसे? जैसे निमिचंद भाई रखवाल वाले, किरण भाई निमिचंद भाई रखवाल वाले, उनसे हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ी। बराबर, जो लघुजन सिद्धांत प्रवेश में उदाहरण देते कि रावण के रावण ने सीता का अपहरण किया, इसलिए कहाँ गया? नरक गया। और सीता कितनी थी? एक। स्वामी जी भी कई बार उदाहरण देते, कौन सा उदाहरण? कचरी के चोर को फांसी की सजा है। और शक्तियों के उदाहरण में कहते हैं कि सूचना गांगड़ो गांधी ने खवा है। ये उदाहरण कहावते गुजराती की बताते हैं। ककड़ी के चोर को किसकी सजा मिल रही है? फांसी की। ऐसा नहीं होता, अन्याय तो होता ही नहीं सिद्धांत में, अन्याय नहीं होता। अब एक सीता का अपहरण किया, ये तो बुद्धिपूर्वक हो गया, लेकिन उसके अभिप्राय में ऐसी अनंत सीताएं होती तो भी उनका वो अपहरण करता। दिख रहा है कितना बुद्धिपूर्वक? तो इतना ही दिख रहा है। अभी अभिप्राय में जो अनंतता बैठी हुई है, ऐसे ही है ना सब फैलावा है, बोका है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, धर्म श्रवण कर रहे हैं, धर्म चर्चा सुन रहे हैं। वास्तव में सुन रहे हैं क्या? वास्तव में सुने तो सम्यक दर्शन चैतन्य जाए भगवान आत्मा के दर्शन से तत्काल प्रकट हो, पुरुषार्थी हो तो तत्काल तत्काल चैतन्य जाए भगवान आत्मा को, जैसे अज्ञानी शरीर को, मकान दुकान आदि पदार्थों को आग आदि इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, ज्ञानी उसी ज्ञान को अतिंद्रिय बना करके अंतर्मुखी करके उसी ज्ञान के द्वारा चैतन्य जाए भगवान आत्मा को देखते हैं, विलंब करता है, इसका मतलब उसको रुचि नहीं, और उसको रुचि नहीं होने से उसको पुरुषार्थ नहीं है। रुचि संसार की है, इसलिए पुरुषार्थ भी संसार का ही होता है। और ये पता चलता है कि सुनते हुए भी संसार की ही रुचि थी, ये कैसा पता चले? कि चलो अब तो प्रवचन समाप्त हो गया, भोजन करते हैं। जो विकल्प आते हैं, इसका मतलब प्रभु तुझे अभी अपने स्वरूप की लगनी नहीं लगी, स्वरूप की लगनी नहीं लगी है तुझे अभी, इंद्रिय विषय भोगों की ही लगनी लगी हुई है, वही तुझे आनंद आ रहा है। इससे चैतन्य जाए भगवान आत्मा श्रद्धा ज्ञान अनुभूति का विषय नहीं बन पा रहा, कितना ही सुने बिना पुरुषार्थ के प्राप्ति नहीं होती। और अंतर्मुखी विशेषण जोड़ लेना, अंतर्मुखी पुरुषार्थ के बिना चैतन्य गायक भगवान आत्मा की प्रतीति अनुभूति नहीं होती है। पुरुषार्थ अंतर्मुखी ही चाहिए, बहिर्मुखी पुरुषार्थ से न धर्म होता है, न शांति प्राप्त होती है, न आनंद प्राप्त होता है। चैतन्य जाए भगवान आत्मा के आनंद का भोग करना, शांति का वेदन करना, ये सच्चा धर्म है। ये धर्म आज तक प्रकट हुआ ही नहीं है कि चैतन्य जाए भगवान आत्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखे। ये मकान दुकान मेरा तेरा तो बहुत दूर की बात, ये मेरा है ये तो भ्रम है, अज्ञान है, ये तो तेरा है नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि ये तेरे ज्ञान का देह है, लेकिन ज्ञान का देह भी कहते कि तेरे भीतर स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, तूने उस ओर देखा इसलिए ज्ञान हुआ, ये भी भ्रम है। नहीं बताइए बहु भाई, इस जीव ने मकान दुकान रुपए पैसे की तरफ देखा इसलिए ज्ञान हुआ, ये भी भ्रम है। क्योंकि सत्य शक्ति के कारण से ये सहज ही ये झलकते हैं। और स्वावरण, पंडित साहब ने भी याद किया था, वेदी भाई साहब ने भी याद किया, स्वावरण सोचम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्था हो, कि किसी के समझाने से समझ में आ गया, वो सुनने वालों का ज्ञान भी सही नहीं, और सुनाने वाला ये कहे कि मैंने समझाया इसलिए समझ में आया, तो समझाने वाला भी मूर्ख। उपल नाव बताया बिना गुण किनको उपल नाव बताया कि जो सत्य तत्व का उपदेश नहीं देते, जो कसाय के पोषण के लिए उपदेश देते हैं और सच्चा तत्व ज्ञान हो और सच्चे तत्व ज्ञान के द्वारा वक्ता अपने मान का पोषण करता है तो अनंत काल के लिए तत्व ज्ञान से दूर चला जाता है। क्योंकि तत्व ज्ञान जैसा है वैसा वीतराजी तत्व ज्ञान को वीतराजी भावों के साथ ही परोसा जाना चाहिए, तब तो वो असर करता है, नहीं तो सामने वाले का समय भी बर्बाद और अपना भी समय बर्बाद। व्यवहार में धर्म बताना ये क्या है? उपल नाव है, खुद भी डूब जाएंगे और जिनको ये बता रहे उनको भी समझ में आ जाएगा कि चैतन्य जाए भगवान आत्मा हर उपदेश में, हर जीवन में, हर क्रिया में ऊर्जा रहना चाहिए। कायोत्सर्ग किस लिए, पूजन किस लिए, मेरी बात समझ में? जितने भी प्रयोजन है, जैसा उदाहरण बताया था कि फसल की रक्षा के लिए बाड़ लगाई जाती है, ऐसे ही चैतन्य जाए भगवान आत्मा में स्थिर रहने के लिए ये बाड़ लगाई जाती है। तप आदि 28 नील गुण आदि का पालन किस लिए, ये उदाहरण हो रहा था स्वामी जी के, इसमें कि कोई बालक आहार के लिए निकले हुए रात, और रास्ते में कोई बालक रोता हुआ सुनाई दिया, रोने के शब्द सुनाई देंगे तो रोता हुआ उसके शब्द सामने आ गए तो वापस आ गए, हाँ प्रभु नींद आ रही है। कई लोग ज्यादातर जगते हैं, कोई कोई सोता है, अरे सोने वाला कईयों का समय बर्बाद कर जाता है। क्या है कि बालक रास्ते में रोता हुआ मिला तो मुनिराज कहता, सामान्य लोग तो विचार करते हैं कि अंतरा हो गया, मुनिराज क्या विचार करते, ओहो हम तो चैतन्य ज्ञान में डुबकी लगाने वाले, शांत रस में रहने वाले हैं, इसके रुदन से उसमें बाधा पड़े ऐसा न हो चलेगा। चैतन्य के रस में बाधा पड़े ऐसा काम मुनिराज नहीं करते, वापस चल जाए। लोग व्यवहार में कहते अंतराय हो गया, ऐसे ही चैतन्य के ज्ञान में उसके तत्व ज्ञान में अंतराय पड़े ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए। अवश्य का सेवन ये भी आ गया, अति व्यापार धंधा आदि ये भी आ गया, मेरे वचन कि चैतन्य से दूर रखे, मुझे अपने स्वरूप से दूर रखे, ऐसी परिणति का त्याग कर देना। यदि सच्ची आत्मार्थता हो तो सहज ही ये जीव कार्य करेगा। क्या कि अपनी परिणति को अपने से दूर रखे, ये कार्य संसार का कार्य है, धर्म का या शांति का कार्य नहीं है। देखो पढ़ते दोबारा, पर आत्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा, पर ज्ञेय ग्रहण आत्म, देखो आगे क्या है, आत्म ज्ञानाकार ग्राहण, अब ये जो आकार शब्द है उसको और जोड़ लेना, थोड़ी मेहनत और कर लो, पर ज्ञेय आकार आत्म ज्ञान आकार, मैं बात सुनिए, पर ज्ञेय आकार आत्म ज्ञान आकार, पर ज्ञेय आकार ग्रहण और आत्म ज्ञान आकार ग्रहण, ऐसे स्वभाव वाली परिणम्य परिणामकत्व शक्ति चैतन्य जाए भगवान आत्मा में कितनी है, तो जिसका भाव नहीं, अनंतानंत शक्तियों का पिंड चैतन्य जाए भगवान आत्मा। देखो एक बात हो, एक सुई की नोक है, उस सुई की नोक पर उतने क्षेत्र में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद है, श्री की नोक पर असंख्यात लोक प्रमाण चंद है। सुनना भैया, केवल ज्ञान की सूक्ष्मता है, और केवल ज्ञान की सूक्ष्मता के अलावा दूसरे प्रयोजन से बात कह रहा था कि उस नोक जितने क्षेत्र में कंद कितने, असंख्यात लोक प्रमाण। नहीं, दिमाग कचरा तो नहीं आपने? नोक जितने क्षेत्र में, एक लोक में होते असंख्यात प्रदेश, और ऐसे असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश होते हैं, उनकी जितनी संख्या है, उतने प्रदेश उतने संघ, एक चीज नोक जितने क्षेत्र। बराबर। इसके अलावा उसी से एक एक संघ में असंख्यात लोक प्रमाण अंदर होते, दिमाग और फट गया। वो पहले के एक श्री के नोक जितने क्षेत्र में इतना हो गया है, और असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, और एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, और एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण निगोध शरीर। पट गया दिमाग। और यहाँ तक नहीं बताना था, इतनी केवल जानकारी थी। अच्छा, लेकिन स्वामी जी ने तो तत्व आत्मा के लिए तैयार कर रखा। देखो, ये भी सौक्ष्म ज्ञान है, लेकिन मुख्यतः चैतन्य जायक भगवान आत्मा के ज्ञान को रख करके बाकी में कोई दिक्कत नहीं। बात ये है कि जो सूक्ष्म शरीर बताए वो निगोध शरीर, अब उस एक एक निगोध शरीर में शरीर एक और जीव राशि इतनी है कि जिसका अंश मात्र भी तीन काल के सिद्ध नहीं। बराबर है। उन जीवों को तो ये सुनने को नहीं मिला है, और हमको सुनने को मिला, तो इसमें भी कोई होशियारी वाली बात नहीं। बात समझ में आई? उनको सुनने को नहीं मिला और हमको सुनने को मिला है, क्या फर्क रहा? वो भी संसार में, हम भी संसार में। मेरी बात समझ में? अरे वो भी संसार में है, वो बिना सुने संसार में है, और ये जीव सुनकर के संसार में है। अंतर क्या रहा? एक दो हो दो गति आदि तो मिल जाएंगे, फिर भी इतनी गोद में फिर चला जाएगा। वहाँ तो ये साधन भी नहीं मिले, और सुनते समय नींद आ जाए, पात्रता नहीं है। परिणम्य परिणाम शक्ति, परिणम्य का अर्थ ये है प्रमाण, और परिणाम का अर्थ है प्रमेय। परिणम्य का अर्थ है प्रमाण, और परिणाम का अर्थ है प्रमेय। यहाँ पर कि तू जैसे अन्य देयों को जानता है, तू स्वयं जान रहा है, इसलिए तेरा ज्ञान प्रमाण हो गया। मैं रखूं और वो तेरे ज्ञान के दे बन गए। तुझे भी कोई जान रहा, केवल ज्ञानी ने जानते ही तो बताए कि सूर्य के नोक जितने क्षेत्र में है, इतने भी एक शरीर जो असंख्यात लोक प्रमाण, पांच बार असंख्यात गुना करने पर जो शरीर आता है, उसमें इतनी जीव राशि है, केवल ज्ञानी ने जाना है। तो केवल ज्ञानी के लिए तू दे हो गया, जैसे अन्य पदार्थों का तू ज्ञायक है। तू क्या है? ज्ञायक है, और तू ज्ञायक है, तेरा ज्ञान प्रमाण है। बराबर। और तेरे ज्ञान के जो विषय बने वो तेरे लिए प्रमेय है। पकड़ में अभी मान वो सरल बात है, यदि ध्यान से सुने हो करें, वास्तव में सुनने लायक बात तो दिनवाने की ही है, बाकी बातें तो संसार में उलझाने वाले हैं। बाकी कोई भी ज्ञान हो, डॉक्टरी का ज्ञान हो, बाकी किसी इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, संसार का धंधे वगैरह का ज्ञान हो, कोई भी हो, सारे का धंधा जो है, अभी तो प्रोफेसर का उदाहरण लिया तो समझ के प्रवचन है, पाप नो धंधो है, पाप का ही धंधा, यहाँ से निकलने के बाद भी क्या चलता है जी का? चौबीसों घंटे पाप का धंधा चलता है और प्रति समय उसके निमित्त से पाप का ही बंद होता है। थोड़ा बहुत समय निकलता है तो सुन लेता है, लेकिन सुनना ये हो गई ज्ञान की सामान्य पर्याय की परिणति हो गई। लेकिन जो इसे सुना मेरे मत नहीं, दो भेद किए, एक ज्ञान परिणति और एक परिणमन परिणति। स्वामी के इसमें आता है कि ज्ञान परिणति और एक परिणमन परिणति, जो हमने सुना है, समझ में आया? प्रभु सुन रहे हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, कर्म के उदय के काल में भी कर्म से भिन्न हूँ, राग रहते हुए भी राग से भिन्न हूँ, सदा काल शुद्ध चैतन्य ध्रुव रूप रहने वाला हूँ, अविनश्वर तत्व हूँ, चाहे नरक में अन्न का कण भी नहीं मिला तो भी मरा नहीं, क्योंकि जीवत्र शक्ति के कारण से जीवित रहा। पानी की बूंद नहीं थी, खाने को अन्न नहीं था, बहु भाई खाने को अन्न का कण नहीं, पीने को पानी की बूंद नहीं, और बहु भाई कहते हैं कि पराधीन होकर के जीव ने इतने दुख से, कैसा दुख था कल्पना तो करो, कि पानी पीने की इच्छा इतनी कि सारे संसार के समुद्र का पानी पी जाए तो भी कम पड़े, और भूख इतनी कि तीन लोग का अन्न खा जाए तो भी कम पड़े। अरे प्रभु विचार तो कर अपने पूर्व पर्यायों का, कि वहाँ पराधीनता में कितने कितने कष्ट झेले, कैसे कैसे कष्ट झेले। और आदिनाथ भगवान की पूजन में ऐसा आता है कि तुरंत गति में मार खाई गधा बना, खुद गधा बना तब तो कितने कष्ट झेले, और यहाँ किसी ने गधा कह दिया वहाँ गधा बनकर के कष्ट झेले, और यहाँ कोई गधा कह दे तो मानसिक कष्ट कितना होता है। अरे शब्द भाषा वर्णना, स्वामी जी समय सार को याद करके कहते हैं कि निंदा और प्रशंसा पुद्गल की पर्याय है, और मैं पुद्गल नहीं हूँ। निंदा और प्रशंसा क्या है? पुद्गल की पर्याय है, और मैं पुद्गल नहीं हूँ। किसी ने कहा तो ठीक, नहीं कहा तो ठीक, कोई मतलब नहीं। सच्चा साधक निंदा और प्रशंसा का इनकार नहीं करता। सच्चा साधक तो अपने चैतन्य जाए भगवान आत्मा की आराधना में रहता है। जैसे जो केवली भगवान है, वो केवली भगवान का ज्ञान केवली भगवान के लिए प्रमाण है, उनके ज्ञान का तू देव बना तो तू केवली भगवान के ज्ञान के लिए प्रमेय है, तू भी प्रमेय है। जैसे अन्य देव ज्ञान के विषय बनते हैं तो वो प्रमेय है, इसी प्रकार से रजनी भाई बहुत चल पाते, अभी से बहुत थोड़ा चल पाता परिणाम सत्सत्व शक्ति और प्रकाशत्व शक्ति, ये विचार भाव प्रकाशत्व शक्ति का सार ये है कि चैतन्य जायक भगवान आत्मा स्वयं अनुभव में आता है, अनुभव करने की जरूरत नहीं ये बात बताई। कौन सी शक्ति में? प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति में ये बात बताई, क्या बताया? स्वयं प्रकाशमान, ये शब्द बारी शक्ति है ना प्रभु, स्वयं प्रकाशमान चैतन्य जायक भगवान आत्मा। ये विकल्प रहता है कि मूल तत्व की बात समझकर समाना है और मूल तत्व की बात ही समझानी, ये स्वामी जी का वही बात, उसी मार्ग पर चलने से कल्याण होता है। किसी को रुके किसी को नहीं रुके, टोडरमल जी ने तो उदाहरण दिया, ऐसा कोई उपदेश नहीं है कि सबको संतुष्ट कर सके। किसी को प्रथमानियों के उदाहरण पसंद है, किसी को कोई बात पसंद है। अब सहज लोग जो बने सो निकले सो निकले, क्योंकि इसका कर्ता भी बोलने वाला नहीं होता, और बोलने वाला कर्ता माने तो ज्ञानी नहीं है। ये जो सहज में जानने में आए वो आत्मा, क्यों कि ऐसी प्रकाश नाम की शक्ति आत्मा में है, मुझ में है। कौन सी? कि स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंयुक्तिमयी, कि इसमें से और भी वो निकलेंगे बोल, कि स्वसंवेदन, कि अपना स्वसंवेदन सहज ही होता है, प्रति समय होता है, प्रति समय हो रहा है। ये प्रश्न और आएगा कि साहब प्रति समय यदि ऐसा है तो अनुभव क्यों नहीं है? ये सहज प्रश्न होता है कि प्रति समय चैतन्य जायक भगवान आत्मा प्रकाशमान है। स्वामी जी ने इसको इस भाषा में निकाला है कि किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी से, बाबू भाई क्या प्रश्न किया कि कारण समय सार है तो कार्य समय सार क्यों नहीं है? ये है किसके लिए? चैतन्य जायक भगवान आत्मा आनंद से भरा हुआ है, सुख रूपी अमृत से भरा हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं। अनंत ज्ञानियों ने यही कहा है कि चैतन्य जायक भगवान आत्मा तो आनंद और अमृत से भरा हुआ है, है लेकिन किसके लिए? यदि मैं स्वीकार नहीं करता तो उसमें से आनंद निकल गया या उसमें से सुख निकल गया, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए, स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए वस्तु का स्वरूप बदल गया, ऐसा नहीं। लेकिन तू दुखी हो रहा है, अलग बात। स्वीकार करे उसके लिए ऐसा ही है। यदि आत्मा में आनंद न होता तो उसको दूसरी भाषा में कहा भाई क्या? अरे प्रभु सुन तो सही, एक बार स्वामी बार बार कहते कि यदि संसार विशेष सुख हो तो, बात समझना, संसार में ही सुख होता, इंद्रिय विषय भोगों में ही सुख होता, महल आदि में ही सुख होता, और ये मकान दुकान रुपए पैसे में ही सुख होता, परिवार आदि में ही सुख होता, तो तीर्थंकर आदि इसका त्याग क्यों करते? प्रभु विचार तो कर, तेरे से छूटता नहीं है, शक्ति नहीं है, चारित्र की सामर्थ्य नहीं है, इसके कारण श्रद्धा को तो गंदा मत कर। अरे प्रभु समझना दी बात, श्रद्धा को तो मलिन मत कर, है? तेरे से छूट नहीं सकता, तेरे से हो नहीं सकता, तो दोष तो मत दे, श्रद्धा को मलिन तो मत कर, श्रद्धा तो निर्मल रख कि यद्यपि मैं इनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी कमी है, फिर भी सही बात तो ये है कि इनके आश्रय से आज तक किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, ये निर्णय तो कर, ऐसा श्रद्धान तो कर। दो कालोत्सर्ग होंगे जिसकी चर्चा अपन शाम को करेंगे, श्रद्धा वाला कालोत्सर्ग और चारित्र वाला कालोत्सर्ग। अच्छी बात है उसमें भी। यहाँ प्रसंग दूसरा है कि एक अपने शक्ति नहीं होने के कारण से श्रद्धा को तो मलिन मत रख, सुख तो वास्तव में अंतरंग में ही है, ऐसा दृढ़ निर्णय कर, ऐसा ही अनुभव कर, ऐसा ही निर्णय, ऐसा ही अनुभव तुझे अनुव्रत महाव्रत आदि व्यवहार चारित्र के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन ये निर्णय भी नहीं करे तो व्रत आदि भी कभी तीन काल में जीवन में प्रकट नहीं हो पाए। अब ये थोड़ी सी शक्ति पूरी करते हैं। परात्म निमित्तक देह ज्ञान आकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूप, ये स्वभाव दूसरे का ज्ञान, मतलब केवली का उदाहरण थे, केवली का ज्ञान तुझे देह बनाए और तू देह बने उनका, ऐसा प्रमेयत्व गुण तुझ में है बराबर, और दूसरे तेरे ज्ञान के देह बनते हैं, तेरे ज्ञान की अपेक्षा से देह हैं, तेरे ज्ञान को यदि हम प्रमाण कहें तो वो तेरे ज्ञान के प्रमेय बराबर है। ये सब है, जब तेरे ज्ञान को हम ज्ञान कहेंगे तो वो तो देह हो गए, लेकिन तेरे श्रुत ज्ञान को प्रमाण कहेंगे तो क्या हो गया? शब्द बदल गया, वो क्या हो गया? प्रमेय हो गए। और ऐसे ही केवल के ज्ञान का तो देव है। अगर केवल के ज्ञान को प्रमाण कहेंगे तो उनके ज्ञान का तो क्या हो गया, प्रमेय हो गया। दूसरे पदार्थों को जानना ये तेरा धर्म है और तू किसी अन्य के ज्ञान का विषय बनता है, तो तेरे भीतर ज्ञान देव और प्रमाण प्रमेय चारों ही धर्म है। समझ में आ गई बात, कितने धर्म बताए शक्ति में, चारों ही बताए। तुझ अन्य का देव भी है, अन्य को जानने वाला भी, बराबर। अन्य के ज्ञान का तू प्रमेय है, प्रमाण का, अन्य के प्रमाण का तू प्रमेय है और अन्य के ज्ञान का तू देव भी है। चारों ही बातें इसमें लिखी है, समय हो गया विशेष करके बात।